केशव से मिलने के बाद राधिका का दिल पूरी तरह टूट गया था। उसे एक उम्मीद थी कि शायद उसके जाने के बाद केशव ने सच पता लगाने की कोशिश भी होगी। केशव आज भी सच से अनजान था कि नशे में उस रात राधिका और उसके बीच क्या हुआ था, जबकि राधिका की इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि सालों पहले हुई गलती के बारे में वो खुलकर बता सके। राधिका रोते हुए होटल से बाहर निकल गई थी। ना चाहते हुए भी उसके दिमाग में वो 24 साल पुरानी यादें ताज़ा होने लगीं। लगभग 24 साल पहले गोल्डन टाउन हॉल, जो मर्चेंट फैमिली की सबसे कीमती प्रॉपर्टीज़ में से एक था, वो कोई बहुत बड़ी बहुमंजिला इमारत नहीं थी, लेकिन शहर के बीचों बीच बने होने की वजह से वो आकर्षण का केंद्र था। दूसरी बात, उस जगह पर हर वीकेंड बड़े बड़े बिजनेसमैन पार्टी करने के लिए आते थे। वो जगह एक पार्टी वेन्यू के साथ साथ अमीर लोगों के वक्त बिताने का जरिया थी। वहाँ पार्टी हॉल के अलावा बिजनेसमैन अक्सर अपनी मीटिंग करते थे या किसी तरह के बोर्ड गेम में वक्त बिताते थे। कहते हैं उस जगह पर बहुत बड़े बड़े सौदे हुए हैं। कोई उस जगह पर गरीब से अमीर बना था तो कोई एक ही रात में अमीर से गरीब बन जाता था। एक ऐसी ही पार्टी वहाँ 24 साल पहले हो रही थी, जो एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे की एंगेजमेंट पार्टी थी। वहाँ शहर की सभी बड़ी बड़ी हस्तियाँ मौजूद थीं, जिनमें राधिका और केशव भी मौजूद थे। सभी मेहमान एक दूसरे से मिल रहे थे। इन सबके बीच किसी ने राधिका के कंधे पर हाथ रखा तो उसने पलट कर देखा। केशव अपनी माँ के साथ खड़ा हुआ था, वही माँ जिनकी शक्ल बिल्कुल इशिका से हूबहू मिलती थी। राधिका को देखकर केशव की माँ आरती सिंघानिया ने मुस्कुराकर कहा, मानना पड़ेगा केशव ने बिल्कुल सही तारीफ की थी तुम्हारी। तुम दिखने में बहुत खूबसूरत हो मैं सिंघानिया। अफसोस है कि आज हम पहली बार मिल रहे हैं। आरती राधिका को काफी गौर से देख रही थी। राधिका ने लाल रंग की साड़ी पहनी थी, जिसके साथ स्लीवलेस ब्लाउज था। उसके कंधे से थोड़े ही लंबे बाल थे, जो लेफ्ट कंधे पर एक साइड सेट किए हुए थे। बालों में डायमंड क्लिप और रियल डायमंड ज्वेलरी के साथ इस मिनिमल मेकअप में भी वो खूबसूरत नजर आ रही थी। आरती के साथ साथ और भी कई बिजनेसमैन थे जो राधिका की तरफ देख रहे थे। आरती सिंघानिया राधिका से बात करने पहुंची थी तो कहीं ना कहीं उन्हें जलन हो रही थी कि अब वे मर्चेंट फैमिली के साथ रिश्ता नहीं जोड़ पाएंगे। वहीं राधिका दिखने में ही सिर्फ खूबसूरत नहीं थी, उसका बिहेवियर भी काफ़ी सॉफ्ट था। उसने आरती के पैर छूने चाहे तो वो कुछ कदम पीछे हो गई। उसने राधिका को हल्का सा हक करते हुए कहा, हम इतने भी पुराने ख्यालों के नहीं हैं कि तुम आकर सीधे हमारे पैर छुओ। लगता है अब तो मिस्टर मर्चेंट से बात करनी ही होगी। राधिका उनकी बातों का मतलब समझ रही थी। इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी, लेकिन वो मुस्कुराहट अगले ही पल गायब हो गई जब केशव ने कहा, कम ऑन माँ, अभी मेरी उम्र ही क्या हुई है और आप मुझे शादी जैसे बंधन में बांधने का सोच रही हैं। मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। और मिस सिंघानिया, आप माँ की बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, उन्हें हर दूसरी लड़की मेरी होने वाली पत्नी नजर आती है। कोई बात नहीं मिस्टर सिंघानिया, मैं उनके जज्बातों को समझ सकती हूँ। नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। इतना कहकर राधिका वहाँ से हट गई थी। केशव के बर्ताव से राधिका की आंखों में हल्की नमी आ गई थी, जो उसकी दोस्त मीनाक्षी ने नोटिस कर ली थी। मीनाक्षी ने राधिका से कहा, तुम केशव को पसंद करती हो, लेकिन जानती हो ना वो कैसा इंसान है। आए दिन लोगों के बीच उसके अफेयर्स की ही चर्चा होती रहती है। अफेयर ना भी हो, लेकिन उसे लड़कियों से घुलना मिलना पसंद है। पता नहीं मीनू, उसकी बातों से लगा था वो मुझे पसंद करता है, लेकिन तुम सही कह रही हो। शायद बाकी लड़कियों की तरह मैं भी उसका टाइम पास करने का ही एक जरिया थी, राधिका ने जवाब दिया। इस वक्त वो अंदर ही अंदर टूटा हुआ महसूस कर रही थी, तो सीधे उसके कदम बार एरिया की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं उनकी बातचीत के बीच से राधिका के अचानक से हट जाने पर आरती ने केशव की तरफ घूर कर देखा और उसे डांटते हुए कहा, ये क्या किया तुमने? तुमने हमें बताया था तुम उसे पसंद करते हो और हम शादी की बात लगभग करने वाले थे, लेकिन बीच में सब खराब कर दिया। ऐसे ही तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है केशव। और क्या करता, आप उसे डरा रही थी शादी की बात करके। अभी तक तो मैंने भी राधिका को अपने दिल की बात नहीं बताई है, कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे पसंद ना करती हो और शादी का नाम सुनकर अपने कदम पीछे ले ले। प्लीज थोड़ा टाइम दीजिए, केशव ने उन्हें समझाते हुए कहा। ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम भी मत लगाना, कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छा रिश्ता हमारे हाथ से चला जाए। लड़की दिखने में खूबसूरत है, समझदार भी नजर आ रही है, ऊपर से खानदान तो सोने पर सुहागा है। हमें हर हाल में राधिका मर्चेंट अपने घर की बहू के रूप में चाहिए, आरती ने कहा। इतना कहने के बाद केशव को अकेला छोड़कर वो वहाँ बाकी लोगों से मिलने के लिए चली गई। ऐसा नहीं था कि आरती सिंघानिया के मन में प्रॉपर्टी वगैरह का कोई लालच था, उन्हें बस अपने बेटे के लिए एक अच्छी बहू चाहिए थी, जो उन्हें इस वक्त राधिका के रूप में नजर आ रही थी। वहीं उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी मीनाक्षी उनकी बातें सुन रही थी, वो भी केशव को पसंद करती थी। आज जिस तरह से केशव ने राधिका के साथ बर्ताव किया तो उसके मन में एक उम्मीद जाग गई थी कि शायद वो केशव से शादी कर पाएगी, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर उसके दिल के अरमान धरे रह गए। नहीं, ये नहीं हो सकता, केशव राधिका को पसंद करता है और आरती सिंघानिया भी यही चाहती है कि केशव राधिका से शादी करे। मैं कैसे भूल गई थी कि राधिका को तो कोई भी अपने घर की बहू बनाना चाहेगी, क्योंकि वो तो मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती है। ओ माय गॉड, मैं ये नहीं होने दूंगी, मीनाक्षी ने मन ही मन कहा और वो तेज कदमों से चलकर केशव के पास गई। मीनाक्षी को देखते ही केशव ने तुरंत पूछा, मीनाक्षी तुमने राधिका को देखा? इतनी देर से नजर नहीं आ रही है।
वो वहाँ बार एरिया की तरफ गई है, बहुत परेशान लग रही थी। चलो ना, हम भी वहीं पर चलते हैं, मीनाक्षी ने जवाब दिया। केशव ने उसकी बात पर हामी भरी और राधिका के पास चला गया। राधिका ड्रिंक जरूर कर रही थी, लेकिन उसने अपने होश नहीं खोए थे। राधिका को ड्रिंक करते देखकर केशव ने हल्की हैरानी से कहा, तुम और ड्रिंक कर रही हो, तुमसे हैंडल नहीं होने वाला, रहने दो इसे। आपको क्या लगता है मिस्टर सिंघानिया, क्या हर चीज आप ही से हैंडल होती है? मुझे मत रोकिए, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, आपके साथ निभाना है तो बताइए, राधिका ने थोड़ी मदहोश आवाज में कहा। केशव ने इसे एक चैलेंज की तरह लिया और वो राधिका के साथ में बैठकर ड्रिंक करने लगा। कुछ ही देर में दोनों नशे में धुत हो चुके थे। मीनाक्षी को इसी मौके का इंतजार था जब वो राधिका को बदनाम कर सके। मीनाक्षी ने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं की थी। उन दोनों की हालत देखकर मीनाक्षी ने कहा, तुम दोनों काफी नशे में हो, ऐसे में किसी ने देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। ऐसा करते हैं, हम ऊपर किसी कमरे में चलते हैं। नहीं, मुझे और पीना है, मैं मिस्टर सिंघानिया से हार नहीं सकती, राधिका ने कहा। लेकिन मीनाक्षी जबरदस्ती उन दोनों को वहां से ऊपर कमरे में ले जाने लगी। उसने इसके लिए एक बारटेंडर को भी पैसे दिए। मीनाक्षी ने उन दोनों को कमरे में बंद किया और वहां से बाहर आ गई। वहीं कमरे के अंदर राधिका और केशव अकेले थे। राधिका केशव के पास आई और मदहोशी से हंसते हुए बोली, तुम समझते क्या हो खुद को केशव सिंघानिया, एक तरफ ऐसे जताते हो जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी माँ के सामने ये बोलते हो कि तुम्हें अभी अपनी लाइफ एंजॉय करनी है। मैं अच्छी तरह समझती हूँ तुम लड़कों का एंजॉयमेंट। अरे नहीं, तुम मुझे गलत समझ रही हो, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा टाइम देना चाहता था। तुम्हें टाइम नहीं चाहिए तो मैं तो आज ही तैयार हूँ, केशव ने जवाब दिया। क्या सच में तैयार हो, राधिका ने मासूमियत से बार बार पलके झपकते हुए पूछा, जिस पर केशव ने हामी सिर हिला दिया था।
यहीं से उनकी पहली नादानी की शुरुआत हुई थी, जब राधिका और केशव सब कुछ भूलकर एक दूसरे के हो गए थे। अगली सुबह जब राधिका को होश आया तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने एक नज़र केशव की तरफ देखा। राधिका अपनी गलती को समझती थी, साथ ही ये भी कि अगर उसे उस हाल में किसी ने देख लिया तो उनकी बहुत बदनामी होनी थी, इसलिए वो तुरंत कपड़े पहनकर पिछले दरवाजे से निकल गई थी। कुछ ही दिनों में उसे अपनी प्रेगनेंसी का पता चला तो वो अपने बच्चे और खुद को बचाने के लिए आदर्श से शादी का वादा करके वहां से हमेशा के लिए निकल गई थी। पुरानी बातें याद आने पर राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है केशव, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो? राधिका को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर केशव ये गलती कैसे कर सकता था। जिस हालत में सुबह राधिका उठी थी, वो समझ गई थी कि रात को क्या हुआ होगा। केशव भी उसी हाल में उठा था, तो क्या उसे जरा भी समझ नहीं आया कि कल रात उसने किसके साथ वक्त बिताया था? दूसरी तरफ अभिमन्यु अभी भी राजवंश विला के गार्डन में खड़ा हुआ पृथ्वी को जाते हुए देख रहा था। इस बीच इशिका भी वहां पर आ गई। उसे पार्थ और अभिमन्यु की बातचीत के बारे में कुछ अंदाजा नहीं था, बस उसे इस वक्त अभिमन्यु के माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई दे रही थीं। इशिका ने अचानक से आकर अभिमन्यु का हाथ पकड़ा तो उसका ध्यान टूटा। अभिमन्यु ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, सॉरी, वो मैं तुम्हें बताना भूल गया था कि पृथ्वी कल तक यहाँ पहुँच जाएगा, एक ज़रूरी काम होने की वजह से वो नहीं आ पाया। मेरी उससे बात हो गई थी, लेकिन तुम क्यों परेशान हो? मैंने दूर से देखा कि पार्थ और तुम बात कर रहे थे, क्या कहा उसने? इशिका ने पूछा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और इशिका के चेहरे को अपने हाथों में भरकर कहा, वो जानता है तुम प्रेग्नेंट हो और वो इस बात का पूरा फ़ायदा उठाना चाहता है। इशिका, जब तक हम यहाँ पर रहेंगे ये हमारी ज़िंदगी को मुश्किल बनाते रहेंगे। अब तक मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब हमारी लाइफ में हमारे बच्चे आने वाले हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि जो बचपन में तुमने और मैंने सहन किया था उसका साया भी हमारे बच्चे पर पड़े। ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ज़्यादा ही सोच रहे हो। अगर पार्थ यहाँ पर अपना हिस्सा लेने आया है तो उसे अपना हिस्सा लेने दो और फिर वो चला जाएगा। सब कुछ लीगली हैंडल करते हैं ना? इशिका ने उसके हाथ को सहलाते हुए कहा। लेकिन मामला लीगल नहीं लग रहा। अगर सब कुछ लीगल तरीके से करना होता तो वो इतने सस्पिशियस तरीके से हमारे पीछे नहीं आता, अभिमन्यु ने जवाब दिया। उसकी परेशानी भी जायज थी। इशिका ने उसकी बात पर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तो फिर उसके नेक्स्ट स्टेप का वेट करते हैं, कल बोर्ड मीटिंग में उसके इरादे सामने आ ही जाएंगे। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उसकी बात पर हामी भरी। इशिका के साथ होने पर उसकी सारी मुश्किलें खुद ब खुद ही आसान हो जाती थी, लेकिन उसकी ये मुस्कुराहट कुछ ही पलों की थी। अचानक अभिमन्यु के पास एक कॉल आया और उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कॉल कट होने के बाद इशिका ने सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा तो अभिमन्यु ने कहा, आयशा मेंटल असाइलम से भाग गई है, कोई उसका साथ दे रहा है और ज़रूर इसमें उर्वशी राजवंश का हाथ है। आयशा का जिक्र होते ही इशिका के चेहरे पर भी परेशानी के भाव उभर आए थे। अभिमन्यु को उर्वशी पर शक था कि उसी ने आयशा को भगाया है, तो वहीं उर्वशी इस वक्त अपने कमरे में परेशान थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लड़की मेंटल असाइलम से भाग गई है? उस पर पूरी नज़र रखी जा रही थी, मैंने भी अपने आदमी छोड़े थे, मैंने उसकी मदद नहीं की, तो कौन है वो जिसने उस पागलखाने से भगाया है? उर्वशी ने खुद से कहा। उर्वशी वो नहीं थी जिसने आयशा को भगाया था, तो वो कौन था जिसने आयशा को मेंटल असाइलम से भगाया? इस वक्त आयशा कहाँ थी ये कोई नहीं जानता था,
पर एक बात तय थी कि अगर वो पागलखाने से भाग गई है तो उसका पहला वार अभिमन्यु और इशिका पर ही होने वाला है, खासकर इशिका पर। पुरानी बातें याद आने पर राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है केशव, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो? पुरानी बातें याद आने पर राधिका ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या सच में तुम्हें कुछ याद नहीं है केशव, या फिर तुम जानबूझकर अनजान बन रहे हो?